अद्वैत अमर को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही जानवी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और अमर और अद्वैत दोनों की नज़रें उस पर टिक गईं। आज जानवी ने गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था जिसके साथ नेट का दुपट्टा था। वो अपने कानों में झुमके पहनती हुई नीचे आ रही थी। काफ़ी हड़बड़ाहट में लग रही थी। वो जैसे ही हॉल में आई उसने अमर और अद्वैत दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी अमर, पता नहीं कैसे मेरी आँख नहीं खुली और आपकी कॉफ़ी लेट हो गई। जानवी का एक झुमका अभी भी उसके हाथ में था और डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अद्वैत अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स वहीं टेबल पर रखते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ और फिर धीमे कदमों से जानवी के पास आकर उसके हाथ से वो झुमका लेते हुए बोला, महबूबा इसमें डरने वाली क्या बात है, अगर तुम्हारी आँखें नहीं खुली तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हो सकता है रात को तुम देर से सोई थी इसीलिए तुम्हारी आँखें नहीं खुली, घबराओ मत। इतना बोलने के साथ अद्वैत ने जानवी के सिल्की बालों को उसकी गर्दन से दूसरी तरफ किया और उसके कान में झुमका पहनाने लगा। जानवी की आंखें बंद हो चुकी थीं और मुठ्ठियां उसके अनारकली पर कस गई थीं। वो इस वक्त अमर की उन लाल आंखों का सामना नहीं करना चाहती थी जो अद्वैत को उसके इतने करीब देखकर दहक उठी थीं। अद्वैत ने झुमका पहनाने के बाद जानवी के माथे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो महबूबा, पर तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, जैसे अमर ने तुम्हें बहुत परेशान किया हो। तुमने खाना नहीं खाया क्या? जानवी ने मुश्किल से अपने गले को तर करते हुए अपने होठों को खोलकर कुछ बोलना चाहा, पर इसकी नज़रें अमर की तरफ उठ गईं। वो चाहकर भी अद्वैत के उस हाथ को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वहीं अमर कुछ पल अद्वैत की उस आवाज़ को सुनता रहा, पर जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो एक झटके से सोफे से उठा और सामने रखी टेबल को एक लात मारते हुए किसी घायल शेर की तरह गरजते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है? उसकी टेबल के उलटने की आवाज़ इतनी तेज़ हुई थी कि जानवी अपनी जगह से चीहूं उठी थी। उसने घबराकर अद्वैत के हाथ को खुद से दूर कर दिया, जिसे देखकर अद्वैत ने गुस्से में मुड़कर अमर की तरफ देखा। अमर ने जानवी के पास जाते हुए अद्वैत को आंखें दिखाकर कहा, भूलो मत ये मेरी पत्नी है, क्या महबूबा महबूबा लगा रखा है, इसका एक नाम है, तुम इसे उस नाम से भी बुला सकते हो। अभी तक हमारा डाइवोर्स हुआ नहीं है तो मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं देता हूँ कि तुम उसके इतने करीब रहो, अद्वैत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। तुम होते कौन हो मुझे इजाज़त देने वाले, मेरी अपनी ज़ुबान है और मेरे सामने वो लड़की है जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो मैं उसे क्यों ना महबूबा बुलाऊँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जो उसका चंद महीनों का पति है। यहाँ शायद अमर के सब्र की इम्तिहा थी। वो तेज़ कदम उठाते हुए अद्वैत के पास गया और अगले ही पल एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुँह पर मारते हुए गरज कर बोला, मैं उसका चंद महीनों का पति नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी तरह उसकी खूबसूरती पर मरने वाला चंद दिनों का आशिक। मोहब्बत खूबसूरती से नहीं की जाती है अद्वैत शेखर, किरदार से की जाती है, और तुमने तो आज तक उसके किरदार को परखा भी नहीं है, तुम कैसे उसे अपनी मोहब्बत का नाम दे सकते हो, वो भी मेरे होते हुए। अद्वैत के मुंह के किनारे से खून की धार बह रही थी। जानवी ने घबराहट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वो अमर को रोकना चाहती थी पर उसके गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अमर की तरफ अपने कदम बढ़ाने की। वहीं अद्वैत ने भी अपने मुंह पर लगे खून को पहुंचते हुए गुस्से से अमर को देखा और अगले ही पल एक जोरदार लात अमर के पेट पर मारते हुए बोला, मैं तुम्हारे होते हुए भी उसे अपनी मोहब्बत बोलूंगा। वो सिंदूर जरूर तुम्हारा नाम का लगाती है, पर तुम्हारा प्यार कितना है ये इन तीन दिनों में दिख चुका है। तुम तो उस पर विश्वास भी नहीं कर पाए और बोलते हो उसके किरदार को जानते हो। सीरियसली मुझे हंसी आती है तुम्हारे इस बिना नींव वाले इष्ट को देखकर। इष्ट के नाम पर कलंक हो तुम, समझे? अमर लड़खड़ाते हुए दो कदम पीछे हट चुका था। उसे ऐसे गिरते देखकर जानवी भी जल्दी से उसे संभालने के लिए आगे आई और अगले ही पल वो उसके जख्मी हाथों को पकड़ते हुए बोली, अमर आपके हाथों पर कल की चोट लगी है, इससे खून बहने लगा है, प्लीज लड़ना बंद करिए। अमर ने गुस्से से जानवी के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लिए और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जानवी उसकी धमकी सुनकर घबराई जरूर थी, पर अमर के जख्मी हाथ देखकर उसका दिल उसे अकेला छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो जबरदस्ती अमर के हाथों को पकड़ते हुए बोली, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अमर ने जानवी के उस मासूम चेहरे को देखा जिस पर कई दिनों बाद जिद दिखाई दी थी। अद्वैत ने आगे बढ़ना चाहा तो जानवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती जब तक हमारा डाइवोर्स हो तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, चले जाओ यहाँ से। अद्वैत ने जल्दी से कहा, महबूबा अगर मैं नहीं आया तो ये जालिम इंसान तुम्हें बहुत परेशान करेगा, तुमसे इतना सारा काम करवाएगा जो मैं नहीं देख सकता हूँ। जानवी ने गुस्से में कहा, काम करने से मैं मर नहीं जाऊंगी। अद्वैत की आंखों में जानवी के इतना गुस्सा करने के बाद भी सिर्फ नरमी थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, पर प्लीज जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अमर हैरानी से अद्वैत और जानवी को देख रहा था। उसे ये तो समझ आया था कि जानवी को गुस्सा क्यों आ रहा है, पर अद्वैत क्यों उसका गुस्सा झेल रहा है।
है। अद्वैत ने जल्दी से टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां मैंने तुम्हारे लिए तोहफा रखा है, प्लीज एक बार उसे देख लेना। इतना बोलते हुए वो एक घूरती हुई नजर से अमर को देखा और फिर हल्के गुस्से में बोला, और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, बड़ा आया मेरी मोहब्बत पर कीचड़ उछालने वाला। इतना बोलकर अद्वैत तेज कदमों से फार्म हाउस से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद जानवी ने आंखें बंद करते हुए एक चैन की सांस ली।